रात की बातें बयान करने के बाद अब कुछ दिन भर की सरगर्मियाँ जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद बिल कुरान करने के लिए लाजिम हैं, वो कर ही नहीं सकता अल्लाह के रास्ते का जिहाद, वो कुरान के साथ लोगों को जोड़ ही नहीं सकता जिसकी ज़िंदगी में ये सिफत नहीं जिसका तذکرہ आगे आ रहा है कि वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़तुरू वकान बैन ज़ालिका कवामा। और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी, बल्कि इनका खर्च करना इसराफ और बुखल के दरमियान एतदाल से होता है। बज़ाहर कैसी आदत है, क्या है जी, पर्सनल बात है, लेकिन इसका अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। पहली बात आप देखिए कि जिस बंदे का खर्च, अगर सिर्फ हम माल ही को ले लें, क्योंकि यहाँ दो लफ्ज़ आए हैं युसरिफ़ु और यकतरु, युसरिफ़ु इसराफ से है, तो इसराफ और ये दोनों क्या होता है? जो रुपया पैसा अल्लाह की इताअत के बग़ैर खर्च किया जाए वो इसराफ है, और दौलत को उसकी इताअत में खर्च करने से रुक जाना बुखल है। जो रुपया अल्लाह ताला की इताअत के बग़ैर खर्च किया जाए, नाफरमानियों में खर्च किया जाए, इसराफ है, और दौलत को इसकी इताअत में खर्च करने से रुक जाना बुखल है। इसी तरह इसराफ और यहाँ यकतरु का जो लफ्ज़ है, इसको फ़र्क आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फजूल खर्ची एक तरफ आ गई इसराफ में, और यकतरु क्या है कि इतने बखील हैं कि जो खर्च करना हो वो भी नहीं करते। बंदे मोमिन अपनी हर चीज़ को बहुत हिसाब से खर्च करता है। हर चीज़ क्यों बोली? नंबर एक, माल। माल के मामले में वो ये नहीं सोचता कि ये सारा मेरा ही है। उसके पास अगर 100 रुपये आता है ना, तो वो 100 को भी 100 नहीं अपना समझता, और अगर उसके पास 1 लाख भी आएगा तो वो उस 1 लाख में से भी उससे ज़्यादा हिस्सा अल्लाह को देगा जितना वो 100 में से देता था। अल्लाह कहता है दिखाओ, तहदीस नेमत के तौर पे पता चले कि तुम्हारे दिन अच्छे हो गए हैं, तुम्हारे बाप ने विरसे में छोड़ा है, तुम्हारे शौहर से मिला है, या तुम्हारा कारोबार अच्छा है, तुम्हारी खर्चों से पता चले, अल्लाह के रास्तों में लगाने से पता चले। लेकिन जब ये पता सिर्फ अपनी ज़ात से ही चले, कपड़े कीमती, गाड़ियाँ कीमती, घर बड़े और बाकी नेमतें बढ़ती जाएं, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह दे सबको और नसीब करे जिनको दिया है, लेकिन अगर इधर तो देते जाओ और अपनी ज़ात पे बढ़ता जाए और अल्लाह के रास्ते में जाहिदन भी जिहादन कबीरा के वक्त हाथ घुटने लगे, दिल तंग होने लगे, तो समझो कि फिर इबादुर्रहमान में नहीं हो। इबादुर्रहमान बिल्कुल बैलेंस पे रहते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं इन्नल मुबज़्ज़िरीन कान इख़वान अश्शयातीन, सूरह बनी इसराइल में गुजरा है, कि बेशक तबज़ीर करने वाले शैतान के भाई होते हैं, ना तो जायज़ चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और ना नाजायज़ जगह पे एक पैनी भी खर्च करनी है। नाजायज़ पे खर्च करना इसराफ़ है, और जायज़ पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना तबज़ीर है। बस ये समझ लें, एक डॉलर भी अगर आप खर्च करते हैं किसी नाजायज़ चीज़ को लेने को, तो शैतान के भाई होने की बात आती है। और बुखल से मुराद क्या है? कि दिल तंग हो, जिसके अंदर एक इंसान का दिल इतना घटे कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को अपने ऊपर एक तावान समझे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी रिवायत है, आपने फरमाया मिन फिक्र रजुली कस्दुहू फी माईशतिही, किसी आदमी की दानिशमंदी की अलामत ये है कि वो खर्च करने में मियाना रवि इख्तियार करे। ये अक्लमंदी की बात है, हाथों में सुराख होना जो है ये कोई अक्लमंदी नहीं होती। हज़रत उस्मान की बात मुझे तो यहाँ बहुत ही प्यारी लगती है कि अपनी ज़ात पे तो एक फ़ालतू बल्ब जलाने पे बीवी से नाराज़ हो रहे हैं, और अल्लाह के रास्ते में पूरी अशरफियों की थैली निकाल के दे दी। हम सब भी ज़रा चेक कर सकते हैं अपने बारे में कि हमारे हालात अपने और अल्लाह के मामले में कैसे हैं। एक और रिवायत है बड़ी प्यारी, दो तीन लफ्ज़ों की है, माँ आल मन इक्तसद, कभी भी गरीब नहीं होगा जो दरमियाने रास्ते पे चलेगा। आप देखिए कुछ लोग हमेशा उनका हाथ तंग ही होता है, वजह क्या है कि ज़रूरत से ज़ायद जो खर्च कर चुके होते हैं, तो खर्च करना बहुत लाजमी है मुनासिब तरीके से। इसी तरफ देखिए कि बंदा मोमिन की बाकी चीज़ें, मसलन उसका वक्त, उसकी सेहत, उसकी एनर्जी, उसकी सोचें, ये सारी चीज़ें बहुत बैलेंस्ड होती हैं। ना तो वो किताबी कीड़ा बन के सिर्फ किताबों में रहता है, और ना सिर्फ विंडो वॉचिंग करते हुए बाज़ारों की जीनत बना रहता है, वो अपने वक्त के मामले में भी उतने संजीदा होते हैं और केयरफुल होते हैं जितने अपने माल के बारे में होते हैं। फिर आगे फरमाया वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, और जो नहीं पूछते अल्लाह के साथ किसी और खुदा को, वला यक्तुलूनन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, और नहीं कत्ल करते किसी नफ्स को जिसको कत्ल करना अल्लाह ने हराम कर दिया, हाँ मगर हक के साथ, वला यज़नून, और ना वो बदकारी करते हैं, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्का अथामा, और जो कोई ये काम करेगा वो पाएगा इसकी सज़ा दुगनी। क्या है वो सज़ा? युदा अफलहुल अज़ाबु यौमल क़ियामती व यखलुद फ़ीही मुहाना, दुगना कर दिया जाएगा उसके लिए अज़ाब रोज़े क़ियामत, और हमेशा रहेगा इसमें जलीलो ख़्वार होकर। ये जो तो दुआयात है ना, इनमें उन तीन बुराइयों का तज़किरा जिसमें मक्का वाले बहुत ज़्यादा मुलव्वस थे, जिसको आप कह सकते हैं ना कि इंडल्ज थे, उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी ये तीन बुराइयाँ। नंबर एक शिर्क, दूसरी चीज़ कत्ल, बात बात पे कत्ल कर देते थे, और तीसरी चीज़ ज़िना। इन चीज़ों को छोड़ ही नहीं सकते थे, उनको लगता था कि सब कुछ कर लेंगे लेकिन ये काम नहीं हम छोड़ सकते। अल्लाह ताला ने इन तीनों का तज़किरा इकट्ठा करके बता दिया कि देखो वमन यफ़अल ज़ालिका यल्का अथामा, जो ये काम करेगा इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा होगी। अथामा सा से है, आप देखिएगा कि जिसके अंदर किसी को हलाक कर देने का मानी पाया जाता है, कुछ भी उनके पास नहीं रहेगा ऐसे वक्तों में कि जो अपने आप को देकर अल्लाह ताला से बचा सकें और अल्लाह ताला की नाराज़गी से वो बच सकें। ऐसे लोग जो हैं वो जहन्नुम में कैसे होंगे, यखलुद फीही मुहाना, हौनन से जो लफ्ज़ पीछे गुजर चुका, यानी बड़े बुरे हाल में ये पड़े रहेंगे जहन्नुम के अंदर। कत्ल, गारत, जिना, शिर्क, जिस मुआशरे में ये जमा हो जाएं वो मुआशरे दुनिया में भी अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार होने लगते हैं। इनके ऊपर एक वाक्या भी आता है, यानी बहुत सारे ऐसी अहादीस मिलती हैं कि जिससे हमें ये तीनों गुनाह जो हैं ये इकट्ठे पता चल जाते हैं। एक रिवायत पेश करती हूँ आपके सामने। फरमाया क़्यामत के दिन एक आदमी को बुलाया जाएगा और उसके गुनाहों के बारे में उससे पूछा जाएगा। गुनाहों में इंसान का सबसे बड़ा गुनाह जो होगा वो शिर्क होगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के पलड़े में जो सबसे बड़ा गुनाह क़यामत के दिन आएगा वो शिर्क का गुनाह होगा, फिर उसकी सज़ा वो भुगतेगा, फिर इसी तरह उसके बाद उसको दूसरे गुनाहों की सज़ा भी दी जाएगी। यानी ये पूरा ख़ुलासा है कि इंसान शिर्क के बाद दूसरे गुनाहों की तरफ जाएगा। पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, फरमाया ये कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए हालांकि उसने तुझे पैदा किया। कहा इसके बाद बड़ा गुनाह क्या है, फरमाया अपनी औलाद को इस खौफ से कत्ल करके वो तेरे साथ खाएगी कि वी कैंट अफोर्ड, दो बच्चे खुशहाल घराना। पूछा फिर कौन सा, फरमाया तो अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करें। फिर आपने फरमाया इन बातों की तस्दीक इस आयत से होती है, और आपने यही आयत पढ़ी जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, और सही बुखारी की यह रिवायत है। तो इससे पता चलता है कि एक से दूसरा गुनाह और दूसरे से तीसरा गुनाह होता है। और इसी आयत के साथ वो वाक्या भी तफसीर में हमें मिल जाता है कि एक नेक शख्स थे, किसी मौके पे इस तरह से ट्रैप किए गए कि एक बदकार औरत ने कहा कि या तो मेरे साथ जिना करो, या तुम शराब पियो, या इस बच्चे को कत्ल कर दो, और शायद शिर्क की भी दावत दी। तो उन्होंने इनकार किया। जब बहुत मजबूर हुए तो सोचा कि चलो निस्बतन हल्की चीज़ है शराब, ये पी लेता हूँ। जब शराब पी तो उसके नशे में जिना भी कर लिया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। और इसी तरह का एक वाक्य आता है कि जिसमें फिर शैतान को सजदा भी कर लिया उन्होंने, जिस वक्त शैतान ने उनको रोका। तो बात यह है कि जो बुरी चीज़ें कल बुरी थी वो आज भी बुरी हैं। जिससे जान कल अल्लाह के नबी ने छुड़वाई थी आज भी छुड़ेगी, लेकिन कैसे, जाहिद हम भी ही जिहादन कबीरा। कुरान की तालीमात को आम करेंगे फिर पता चलेगा कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें करते थे, छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे, इतना उनके अंदर शिर्क और शिर्क के साथ कुफर भरा हुआ था और कत्ल था कि बाज दफ़ा सिर्फ अपने बुत के पुजारी ना होने की वजह से दूसरे को कत्ल कर देते थे। आप तारीख को पढ़ के देखिए, मुसलमानों में ऐसा दौर गुजर चुका है कि जब सिर्फ दूसरे फिरके का होने की वजह से लोग कत्ल कर देते थे। कितनी लंबी चौड़ी इसके ऊपर कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन हमें इस सारी बातों को पढ़ते वक्त ये सोचना है कि अल्लाह तू हमें इस किताब के ज़रिए से ऐसी तमाम बुराइयों को ख़त्म करने वाला बना। अगर हमारे अंदर ये बातें नहीं भी हैं तो अल्लाह ना करे हमारे करीब वालों में किसी में हो सकती हैं। तो जब इन चीज़ों को हम रोकेंगे तो फिर ही दुनिया को अमन और चैन मिलेगा। अब ये बड़े बड़े गुनाह तो कर लिए, क्या फिर इसके बाद अब कोई माफ़ी की सूरत नहीं है? नहीं, सूरत है। बड़े बड़े तीन गुनाहों के तस्करे के बाद फरमाया इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन, हाँ मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया। तौबा के बाद कौन सा ईमान है? यानी रिवाइवल करे अपने रिलीजन की, फिर कलमा पढ़े, फिर के अल्लाह अब नया ईमान लाता हूँ, शौरी ईमान लाया, फिर वामिल सालेहन, फिर अच्छे अमल किए। फ़ाउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, तो ये हैं वो लोग इनकी बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देगा। कल जहाँ बुराइयाँ थी वहाँ अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। सारी ज़िंदगी कुफर शर्क फिस्क फजूर में ज़ाया हुई, सच्चे दिल से तौबा की, रहमान की रहमत के साए में आएगा, अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, उस पर रहमत इलाही का मी बरसेगा। इसके बदन पे बदनुमा दाग थे जितने गुनाहों के सारे धो दिए जाएंगे, अल्लाह ताला इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, क्योंकि वह कहानल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह ताला है ही बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर दोबारा तकरार है वमन ताब वामिल सालेहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जिसने तौबा की और नेक काम किए तो इसने रुजू किया अल्लाह ताला की तरफ, जैसे रुजू का हक है। यानी ये सारे काम करने के बाद रुजू होगा अल्लाह की तरफ, गुनाहों से माफ़ी करेंगे तो अच्छा होगा। अब इन दो आयतों को तौबा के ज़िमन में बेहतरीन आयतें कहा जाता है। कभी भी आपने तौबा इस्तग़फ़ार पर दर्स देना हो, बेहतरीन आयतें हैं। और इस पे मुफस्सरीन ने तौबा को बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंगल से पेश किया कि किस तरीके से लोग जब पिछले गुनाह कर लेते हैं फिर नेकियां करते हैं तो अल्लाह ताला उनके पिछले गुनाहों को माफ़ करता है। ये जो बात है ना कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यात, अल्लाह बदल देता है इनकी बुराइयों को सय्यात हिम हसनात, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। नंबर एक क्या, अल्लाह ताला इनका हाल बदल देता है। यानी इस्लाम कबूल करने से पहले जो बुराइयाँ करता था अब नेकियाँ करने लग गया। पहले बुराइयाँ करके मज़ा आ रहा होता था, अब नेकियाँ करके मज़ा आता है। क्या आपको भी कुरान की तरफ आने के बाद ये नहीं लगता? क्योंकि ये भी तो एक अमली तौबा है ना। हम जब कुरान के साथ जुड़ते हैं तो असल में एक नया जन्म लेते हैं, एक नया ईमान हमारे अंदर आता है। रस्मी रिवाजी जो माँ बाप से ईमान मिला होता है उसकी ये एक रिवाइवल होती है। तो लिहाजा दिल बदल गया, तरजीहात बदल गईं। कल गाने में मज़ा आता था, आज कुरान सुनने में मज़ा आता है। कल किसी फ़न के नाम पे सजी हुई महफिल में बैठते थे, अब अल्लाह के नाम पे बनी हुई महफिल में जहाँ अमल की बात मिले उसमें मज़ा आता है। पहले शिर्क करता था, अब एक अल्लाह की इबादत में मज़ा आता है। पहले काफिरों के साथ मिल के मज़ा आता था, अब मुसलमानों से मिलता है। पहले मुसलमानों से लड़ता था, अब काफिरों के अकायद से लड़ता है। ये तो है एक मानी, तौफीक बदल जाती है, अल्लाह उसकी चॉइस चेंज करता है। दूसरा मानी क्या है, किसकी बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देते हैं, फिज़िकली ऐसा होता है। इसकी हदीस बड़ी खूबसूरत है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके छोटे गुनाह पेश करो। सोचिए ज़रा, इसके सामने इसके सगीरा गुनाह पेश किए जाएंगे और कबीरा गुनाहों को मख्फी रखा जाएगा, यानी वो छुपाए होंगे। अब डर तो ये रहा होगा ना, हाय मेरे गुनाह खुल गए। फिर इससे पूछा जाएगा क्या तूने फलां गुनाह किया था, फलां गुनाह किया था? कहेगा जी किया था, इकरार करेगा। कहा इतना इकरार करते हुए डरेगा कि अभी तो मेरे बड़े गुनाह पड़े हुए। फिर अल्लाह ताला उसे फरमाएंगे या फरिश्तों को कहेंगे कि फरिश्तों इसे हर गुनाह के बदले में एक नेकी दे दो। जब रहमत इलाही का ये निराला इजहार देखेगा तो कहेगा अल्लाह ताला मेरे तो वो फलां बड़े बड़े गुनाह भी अभी पड़े हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहे, वो किधर हैं? यानी मुझे उसके बदले में भी नेकियाँ मिले। साहबी कहते हैं कि इस बात को बयान करते हुए अल्लाह के नबी हंस पड़े, यहाँ तक कि आपके दंदाने मुबारक खुल पड़े, आपके दांत दिखने लगे। बल्कि साहबी इसको बयान करते हुए भी मुस्कुरा के दिखाया करते थे कि मैं इस सुन्नत से क्यों महरूम रहूँ। कि फिर बंदे को देखे कि जब पता चला कि गुनाहों पे अजर मिल रहा है तो फिर कहा वो अल्लाह ताला बड़े बड़े भी हैं। ये है उस रहमान की रहमत। इल्ला मन ताब व अमिल सालेहन, सिर्फ ताबा नहीं, ये बहुत करते हैं, अस्तगफार 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 हज़ार दफ़ा कह लें। असल बात के वह अमीला सालेहन, देखिए गलत काम करें और उसको ना छोड़ें, ये तो ऐसे ही है कि मुंह से कहते रहे मैं ये प्लेट नहीं तोड़ूंगी नहीं तोड़ूंगी, फिर हाथ से पकड़ें और एक प्लेट तोड़ते जाएं। हम गुनाह ना छोड़ें और ना उसका कोई इरादा है ना शर्मिंदगी है, और सिर्फ अस्तगफार करते रहें, बात नहीं बनती। इसके लिए एक इंसान को बहुत ज़्यादा अल्लाह से ताल्लुक़ रखना पड़ता है। फिर एक बहुत ही प्यारी बात मुफस्सरीन ने लिखी है, कहते हैं कि जब अल्लाह ताला के बंदों से कोई गलती सरज़द हो जाती है, हो सकती है, याद रखें इंसान से गलती हो सकती है क्योंकि वो इंसान है, लेकिन फिर हालत क्या है, तो वो नदामत और शर्मिंदगी के बायस पानी पानी हो जाते हैं और अपने आप को इतना हकीर समझने लगते हैं और बड़ी आजिज़ी से इल्तजाएँ करते हैं, खौफ अजाब से कांपने लगते हैं, इसके बावजूद मग़फ़रत के भी उम्मीदवार होते हैं, फिर भी अल्लाह से उसकी रहमत मांगते हैं। ये गुनाहों का एहसास तो उनके दिल में ये मलाल लाता है कि अल्लाह मैंने गुनाह किए हैं अब तू मुझे माफ़ कर, फिर अल्लाह माफ़ कर देगा, पलट आओ, फिर क्या कर लिया, गंदे हो के कपड़े धो लो, घर मैला होता है दिन में कई बार धोते हो, कपड़े धोते हो, अपनी गाड़ियाँ साफ़ करते हो, दिल को साफ़ कर लो, फिर क्या हुआ, अल्लाह तो नहीं कहेगा कि क्यों नहीं किया। देखिए दुनिया वाले तो देते हैं ताने, 900 चूहे खा के हज पे गए, तो अल्लाह तो नहीं कहेगा आपको, अल्लाह तो चाहता है कि तुम बस एक दफ़ा मेरे तरफ पलट आओ, एक दफ़ा तुम ये साबित कर दो कि वाकई तुम मेरे बंदे हो। अफसोस की बात है कि गुनाह करके बंदा जब उसको गुनाह ही ना समझे तो फिर तौबा कहाँ करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हमारे गुनाहों का खदशा लगा दे। आप सोचिए तो सही, कभी ज़रा अपने जहन में लाएं कि गुनाह ऐसे ही है जैसे कचरा है, कचरे के ढेर के पास एक सफाई पसंद इंसान कैसे गुजरेगा। इसी तरह एक इबादुर रहमान में होने वाले बंदे को हर गुनाह की चीज़ से फिर नफरत होने लगती है, वो कहता है ये मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं, ये मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं कि मैं यहाँ बैठूँ, ये मेरा स्टेटस ही नहीं, आई कैंट फिट हेयर, मुझे अपना अब इधर अच्छा नहीं लगता। आप देखें खुदा ना खास्ता अगर किसी मौके पे किसी को किसी सिनेमा घर में जाना पड़े और आप मारूफ हैं शहर में किसी को कि भई आप कुरान पढ़ती हैं पढ़ाती हैं, क्या वो बंदा ये इमेजिन भी कर सकता है कि कोई दूसरा बंदा उसको देखे। जब ये सफ़र चलते हैं ना दुनिया से दीन की हिजरत के, तो ये सारे फेज़ आते हैं बीच में, छुटता एकदम नहीं है, लेकिन फिर शर्म होती है, हाय को देख ना ले, किसी को पता ना चल, हाय हम यहाँ आके बैठे, चलो कोई नहीं तुम बैठ के बस तालियाँ ही बजा देना, बस तुम मेहंदी की थाली पकड़ लेना। मैंने कई लोगों से ये बात सुनी है कि जब से दाढ़ी रखी है सिनेमा घर नहीं गए, क्यों भी शर्म आती है कि इस उलिए के साथ सिनेमे में जाएँ, छुट गई ना बुराई, एक बुराई आप एक अच्छी आदत लाते हैं ला मुहाला तौर पर दूसरी अच्छी आदत आप में आने लगती है। बस खवातीन कहती हैं हम तो कुरान पढ़ने जा रहे हैं या बहुत दरसों में भी जाते हैं लेकिन हमारे घर वालों का अमल नहीं बदल रहा, हर वक्त घर में टीवी चलता है ये वो, और मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ बहुत जगह देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह कि इसका फ़ायदा होता है। मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप अपने घर में कुछ शुरू कर लें क्लास, कोई वीकली दर्स करवा लें कुछ, फिर ऐसा ऐसा होगा क्या कि आपका घर जो है ना आपके इर्द गिर्द में दर्स वाला घर मशहूर हो जाएगा। कई हमारे ख़ानदानों में ऐसे घर हैं जी हर बुध को इधर दर्स होता है, हर जुमे को इधर होता है, कहती उससे क्या होगा। मैंने कहा फिर जब आपके घर की ये रेपुटेशन होगी ना तो आप फील करेंगी कि आपके घर वाले ज़रूर इसका ख्याल करेंगे, फिर वो खुद ही होगा भी आज कुछ ना हो, आज घर में दर्स है, आज लोग आ रहे हैं, आज ये हो रहा है। ऐसा ऐसा मैंने देखा है वही लोग जो होते हैं वो फिर मददगार बन के होते हैं कि अच्छा मेहमान आ रहे हैं क्या लाना है, अच्छा क्या करना है, बच्चे तक लगे होते हैं साथ काम करने। तो किसी भी चीज़ में आपको अमल में कमी देखे ना आप और आगे बढ़ें। ये जाहिदुन बिहा जिहादन कबीरा ही की बातें बताई जा रही हैं कि गुनाहों से पहले गुनाहों से माफ़ियाँ मांगो, तड़प रखो, आजिज़ी का एहसास रखो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें और तौफीक देगा और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चेंज आएगी। वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, वो झूठी गवाही नहीं देते। कैसे, वह इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और जब किसी लग़्व चीज़ के पास से गुजरते हैं तो बड़े वक़ार के साथ गुज़र जाते हैं। यह लफ्ज़ आया यशहदून, दो मानों में यह लफ्ज़ आएगा, शहीदा यशहदून पीछे बहुत जगह पढ़ चुके। एक इसका मानी होता है हाजिर होना, है ना, टू प्रेजेंट के मानों में जैसे शहादा देते हैं। दूसरा इसका मानी होता है गवाही देना। हाजिर होने का मानी लिया जाए तो आयत का मतलब क्या बनता है कि वो किसी बातिल सरगर्मी में शरीक नहीं होते, ऐसी महफिलें जो लहव लाभ के लिए मुनक़द हों, ऐसे इज्तमात जहाँ गलत नज़रियात का प्रचार होता हो उसमें शामिल ही नहीं होते। वो कहते हैं हम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। कोई कहते हैं हम क्या करें, मुझे किसी ने कहा कि मेरी पहले ऐसी सारी रस्मों में जाती थी जो बस ऐसी मारूफ है दीन के नाम पे होने की, अब जब से रबी अव्वल आया कितनी जगह दावत आई है मैंने इनकार ही किया, लेकिन अब एक ऐसी दावत आ गई है जो कह रही है कि तुम्हारे ही हिसाब से करनी है, बताओ किस दिन करूँ, मतलब बड़ी क्लोजनेस है, तो अब बताएं मैं वहाँ क्या करूँ, मैं वहाँ फिर चली जाऊँ। अब ये चैलेंज आता है ना इस जिहादी ज़िंदगी में, ये मरहला ज़रूर आएगा जब आप एक लाइन से उतर के दूसरी लाइन की तरफ आते हैं, तो बीच में बहुत बड़ा रिस्क होता है। यही वो लम्हे होते हैं जहाँ अल्लाह आपको जमा दे, तो फिर ला तखाफू नलाउ मतलाइम, फिर नहीं आप डरते कब्र में तन्हा। तो जब आपको समझ आता है कि मेरी कोई नहीं मानता या मेरी किसी ने सुननी नहीं, तो मैं किसी के ससुराल का नाम लेके, बच्चों के ससुराल, अपने बड़े उनकी बात करके अल्लाह को क्यों नाराज करूं? वो फिट ही नहीं होता, उसको कचरे का ढेर लगती है वो जगह, अगर मौत आ गई तो किस हाल में आएगी। दूसरा इसका मानी क्या है, झूठी गवाही देने का, यानी वो झूठी गवाही नहीं देते, यानी ये कबायर में से है। जूर का मानी झूठ है, और हर बातिल चीज़ भी झूठ की होती है, तो झूठी गवाही से लेकर कुफ्र और शिर्क, हर तरह की गलत चीज़ें इसमें आती हैं। जाहिलाना रसूमात, अफ़ाल, इबादुर रहमान तो कम अज़ कम ऐसी महफ़िलों की जीनत नहीं बनते, वो लोगों को रौनक नहीं देते कि हम बहुत बड़े हैं तुम्हारी रौनक बड़ी करेंगे, लिहाजा वो इधर से पीछे हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ख़बर ना दूँ सबसे बड़े गुनाह कौन कौन से? साहबा ने अर्ज़ की जी अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। तो आपने फरमाया किसी को अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना। फिर अल्लाह के नबी टेक लगाए हुए जो थे बैठ गए और फरमाया खबरदार झूठी गवाही। और इन आखिरी अल्फाज को आप बार बार दोहरा रहे थे, हत्ता कि सहाबा ने सोचा कि काश अल्लाह के नबी खामोश हो जाए, जैसे कोई गुस्से में बार बार कहे झूठी गवाही। ये सही बुखारी की रिवायत है, क्योंकि आप देखिए कि झूठी गवाही से हमेशा गलत काम ही तो होते हैं। हज़रत उमर फारूक अपने दौर में झूठी गवाही देने वाले को 40 कोड़े लगवाते थे। आप देखिए कि कज़फ की सज़ा 80 है, तो झूठी गवाही के उसकी आदि करके कि तुमने झूठ बोल दिया, कज़फ भी तो झूठ ही होता है ना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना। फिर उसका मुंह काला करवाते, उसका सर मुंडवाते, और इसको बाजार में फिराते ताकि सबको पता चल जाए कि झूठी गवाही देने वालों का क्या हाल है। हम सोचते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन आप देखिए कि इससे पता क्या चलता है कि किसी इंसान की इज्जत कितनी प्यारी है। किसी के बारे में आप गलत बातें उड़ा दें, आज तो ऐसे लगता है कि हमारा शुआर ही बन गया होगा झूठी गवाहियां देना, ना पता ना जानते ना देखा ना मिले, और बातें क्या फैलाते हैं, फलां फलां, क्या ये झूठी गवाही नहीं, फलां यहूद का एजेंट है, फलां वहाबी है, फलां तो दीन से निकला हुआ है, फलां तो शिया है, फलां तो वो है, फलां तो वो है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं हैरान होती हूँ कि लोग इस ज़ुबान के छोटे से टुकड़े को कितनी तकलीफ़ देते हैं। हदीस में आता है कि हर दिन सुबह उठ के ज़ुबान जिस्म के सारे अज़ा से कहती है हमारे मामले में अल्लाह से डरते रहना, तुम्हारी वजह से हमें भी आग में जाना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि ज़ुबान काट के आग में डाल दी जाएगी और बाकी जिस्म को जन्नत में डाल दिया जाएगा। कितना लोग बोलते हैं, किसी जगह में गई, अब चूंकि यह नया नया काम शुरू हुआ है तो कई जगह नए लोग मिलते हैं, तो एक जो साथी थी वो बड़ी डरती झिझकती मुझे अकेले ले गई, कहनी एक बात पूछनी है, वैसे मुझे यकीन है जो बात आप कहेंगी वो क्या होगी, लेकिन सिर्फ एक बात किसी को मैंने जवाब देना है। मैंने कहा बोले, कहती आप अहमदी तो नहीं है? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? फिर जो उनका मसला था वो शुक्र है हल हो गया। कहती मुझे पहले ही पता था, लेकिन बस क्या करें, लोगों की जुबानें नहीं रोक सकते। ला यशहदू नज़ूर, इसको दिन में 10 दफ़ा पकड़ के खींचे बंदा, तू नहीं बाहर निकले, मारूंगी अगर तू बोली तो। यकीन करें इसको दांतों में दे के दबाया करें। ये सुन्नत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कि एक मौके पे अबू बकर जो थे यूं बैठे हुए थे और हज़रत उमर पास से गुजरे, कहा अबू बकर ये क्या हो रहा है? कहा ये बड़ी तेज़ घाटी हो गई है, इसको ज़रा अपने काबू में कर रहा हूँ। सिद्दीक़ की ज़ुबान अगर पकड़ने के काबिल थी तो हमारी तो शायद खींचने के काबिल होगी। कभी नहीं सोचते किसी पे क्या होगा, कई लड़कियों के रिश्ते छूट जाते होंगे हमारे कमेंट्स की वजह से, कई लड़कों को लड़कियां नहीं लोग देंगे, सिर्फ लोगों के झूठे सच्चे कमेंट्स। यही तो गॉसिप, यही तो बातें करते हैं बड़ी बड़ी महफिलों में, कई कई घंटे बैठते हैं, करें क्या, उसका उससे मामला, वो उसका एजेंट, वो उसके साथ है, वो फलां है, वो फलां है। अल्लाह कहते हैं इबादुर रहमान में तुम नहीं रहे, निकल जाओ, गेट आउट, रहमान के बंदे नहीं हो तुम। अल्लाह अकबर, वाइजा मर्रु बिल्लग़्वी मर्रु किरामा, इतना प्यारा लगता है कि वक़ार से गुजर जाते हैं, वहाँ बैठते नहीं हैं, ना इरादतन ऐसी बेहुदा मजलिसों में शरीक होते हैं, इत्तेफाकन रास्ते में गुजरते हुए कभी हो जाए तो गुजरते हैं। बस आप देखिए कि इसकी बीसियों आपको मिसालें, आप कहते हैं अच्छा जी हम तो जाते हैं तो रास्ते में म्यूजिक चल रहा होता है, हमें तो एयरपोर्ट्स पे एक गंदी तस्वीरें देखनी पड़ती हैं, हम तो ट्रेन में बैठते हैं तो हमें गलत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मर रुकी रामा, इज्जत से निकल जाओ, खड़े ना हो जाओ रुके, राह चलते बुरे एड्स दिख रहे हैं, बुरे बुरे बोर्ड्स हैं, मर रुकी रामा, नज़रें झुका लो। मर रुकी रामा में ये भी आता है कि नज़रें झुका के गुजर जाना, फिर वो आंखें खोल खोल के नहीं देखते कि चलो वैसे तो कोई देखने नहीं देता तो यहाँ हम देख लें इसके बहाने। अच्छे तरीके से अपनी इज्जत कायम रखते हैं। इससे पता चलता है कि ऐसी महफिलों में बैठना बिठाना ये इंसान की इज्जत के खिलाफ है, शराफत के खिलाफ है, वो नहीं ठहर सकते। इसके साथ एक छोटा सा वाक्य अब्दुल्ला बिन मसूद का आता है कि इनका इत्तफाक से एक रोज़ किसी बेहुदा लफ मजलिस पर गुजर हो गया तो वहाँ ठहरे नहीं चले गए। रसूलुल्लाह को ये मालूम हुआ तो फरमाया कि इब्ने मसूद करीम हो गए। सुभान अल्लाह, मर्रु किरामा, क्या आप करीम, और करीम कहते बड़ी सॉफ्ट चीज़ को, करम अंगूर की बेल को कहते थे लोग, क्योंकि अंगूर की शराब पीकर लोग बहुत सखी हो जाते थे, तो इसलिए शराब को भी अरबी में बिनतु करीम कहते हैं, यानी ये बड़े करीम की बेटी है। शराब के नशे में वो अपना पूरा पूरा घर भी लुटा देते थे, तो अब आप सोचिए कि आज के दौर में ये कैसे हो सकता है। और फिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने यही आयत पढ़ी, इससे लगता है ना कि अल्लाह के नबी को दूसरों की अच्छी बातों को क्रेडिट देने की आदत थी, जो बात उसमें होती कुरान के मुताबिक उसको लेकर आगे चले जाते थे। अब हम भी सोचें, हम कहते नहीं हम बर्तन देने गए थे, फिर उन्होंने खाने के लिए रोक लिया, फिर वो बाद में कहनी चाय तो ज़रूर ही पी के जाएँ, और इस तरह वो लोग जो शौक के साथ 2-3 घंटे का पूरा प्रोग्राम म्यूजिकल दे के आए थे, हम मजबूरी के नाम पे देख के आ जाते हैं। चलो वो तो जाके घर सो जाएंगे, हमने घर जाके अभी गिफ्तें भी करनी है, कि अल्लाह की बना वहाँ क्या कुछ था। ये मर्रु किरामा नहीं है, उतना मोमिन साफ सुथरा, ये है ये नहीं। झूठ क्यों बोले आप, नहीं ऐसे मसरूफ़ हूँ, नहीं बिजी हूँ, नहीं ऐसे, क्यों नहीं कह सकते भाई, क्या मसला है। आप देखेंगे कि जिहादन कबीरा के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है आज के दौर में, कि हम लोगों को नाराज नहीं कर सकते। ऐसी महफिलों में जाओ ताकि फिर लोग हमारी बातें सुनने भी आएँ, कितना मारूफ जुमला है। लोग कहते हैं हम तो सिर्फ इसलिए गलत महफिलों में भी जाते हैं, फिर कल मैं दर्स कराऊंगी तो मेरे भी तो घर आएंगी, वो फिर भी नहीं आते। मैंने कहा आप किससे मना करेंगी, जो काम आप कर चुकी हैं उससे मना करेंगी। सोचिए आप, कभी भी याद रखें कि किसी की गलत मान के आप उससे ठीक नहीं बनवा सकते। मर रुकी रामा, इज्जत से चलिए।